الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ حدیث سے دلیل پکڑنا مسلمانوں کا ہر زمانے میں طریقہ رہا ہے، لہٰذا جو انسان حدیث کو بطور دلیل نہیں مانتا ہے وہ سبیل المؤمنین سے ہٹا ہوا ہے، اور قرآن کی وضاحت کے مطابق، صراحت کے مطابق ایسا انسان دنیا میں گمراہ اور آخرت میں جہنم کا حقدار ہے۔ اب مزید کچھ باتیں ہیں جو آگے بڑھ کر ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا یہ ہر انسان کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر واحسن تاویلا۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اس کے رسول کی، اور ان کی بھی جو تم میں سے اولو الامر ہیں، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کے امور کا اختیار ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے درمیان کسی چیز پر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تو اس معاملے کو، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو، ذلك خیر واحسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بات ماننے کا حکم دیا، رسول کی بات ماننے کا حکم دیا، اور اولو الامر کی بھی، پھر اختلاف کی صورت میں رجوع کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، اطیع اللہ، تو اللہ کے ساتھ اطیعو کا لفظ آیا ہے، وہ اطیعو الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن پھر آخر میں کہا تیسرے نمبر پر، وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے معاملے کا اختیار رکھنے والے، تمہارے حاکم، تمہارے علماء، ان کی بھی۔ اس کی تفسیر میں علماء کے اقوال کیا ہیں، ابن عباس ہیں اور بھی لوگ ہیں صحابہ میں سے، اولو الامر سے مراد کون ہیں؟ حکام اور علماء، سماج کے بڑے لوگ، ان کی بھی مانو۔ لیکن یہاں آپ غور کریں گے کہ تیسرے نمبر پر اطیعو کا لفظ ریپیٹ نہیں ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو تیسرے نمبر پر اطیعو کا لفظ الگ سے آیا نہیں، پہلی مرتبہ اللہ کے لیے آیا، دوسری مرتبہ رسول کے لیے آیا، لیکن اولو الامر کے لیے نہیں آیا۔ ایسا کیوں کہ دو مرتبہ ذکر کیا جبکہ تین کی فرما برداری کا حکم ہے؟ علماء نے کہا، ابن حجر اور بہت سارے علماء، عموماً علماء نے کہا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ماننا مستقلاً ضروری ہے، رسول کا حکم ماننا مستقلاً ضروری ہے، لیکن اولو الامر کا حکم ماننا مشروط ہے، کنڈیشن ہے اس کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اگر ان سے ٹکراتا ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اللہ کا حکم ماننے کے بعد رسول کا بھی حکم جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہے کہ وہ قرآن میں نہ ہو، اللہ نے اس کو بیان نہ کیا ہو، نہیں، بلکہ وہ خود اپنی ذات میں دلیل ہے، وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا حکم دلیل کا محتاج ہے کہ اللہ حکم دے رہا اللہ سے پوچھیں دلیل کیا ہے اس کی؟ بول سکتے
نہیں۔
رسول کا حکم ہے، رسول سے دلیل مانگ سکتے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ رسول کی بات خود دلیل ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حاکم ہے یا کوئی عالم ہے، کیا اس کی بات خود دلیل ہے یا دلیل کی محتاج ہے؟ حاکم ہو یا عالم ہو، اس کی بات دلیل کی محتاج ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطیو کا لفظ مستقل استعمال نہیں کیا، پہلے دو کے لیے کیا، دوسرے تیسرے نمبر پر جس کو ذکر کیا اس کے لیے نہیں کیا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی بات خود دلیل ہے، رسول کی بات بھی خود دلیل ہے، لیکن اول الامر کی بات خود دلیل نہیں بلکہ دلیل کی محتاج ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث خود دلیل ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہو، وہ حکم قرآن میں بھی ہو، بلکہ قرآن سے ہٹ کے بھی اگر الگ ایک حکم حدیث میں آتا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے آپس میں درمیان میں کسی میں آپس میں اختلاف ہو جائے، دو مسلمانوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے قبیلوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان، کسی کے بھی درمیان، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تم اختلاف کر بیٹھو، کیا کرو؟ اللہ کی طرف پلٹا دو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو ذالک خیر، یہ خیر ہے، یہی بھلائی ہے، اس یہ پھیرنا۔ اختلاف تو ہوگا، عقل کی اختلاف کی وجہ سے، جذبات اور سوچ کے فرق کی وجہ سے، خواہشات کے، رجحانات کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف تو ہوگا، لیکن پھیرنا ہے اس کو کس کی طرف؟ صرف اللہ کی طرف یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ نے کہا جب دو اللہ نے ذکر کیے تو میں ایک کیوں کہتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو فیصلہ اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے جو آئے گا اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر تم واقعی مومن ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر آخرت اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور کہا کہ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ خیر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپس میں لوگوں میں اختلاف ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ کیا اس کے اختلاف کے حل کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے؟ پھر آپ جو فیصلہ ان کے درمیان کرتے تھے، کیا ان کے لیے ماننا لازم تھا یا نہیں؟ اچھا، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتے تھے وہ لوگ، طور پہ جاتے تھے بات کرنے کے لیے اللہ سے، اللہ فیصلہ بتا دے اب کیا مسئلہ ہمارا، ہاں بیوی شوہر دونوں آئے ہیں یہاں پہ، ایسا کرتے تھے؟ نہیں۔ وہ کس کے پاس جاتے تھے؟ یعنی معلوم ہے کہ اللہ کا فیصلہ بھی کس کے تھرو معلوم پڑتا ہے؟ رسول کے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنے میں انہیں بھی کس کے پاس جانا پڑتا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ جو فیصلہ دیں ان کے لیے ماننا لازم تھا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتے تھے، آپ ان کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، تم کو یہ کرنا پڑے گا، تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو کیا وہ فیصلہ ان کے لیے ماننا لازم تھا؟ ہاں۔ کیا صرف انہیں کے لیے لازم تھا یا قیامت تک کے لوگوں کے لیے؟ تو جو فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ اسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت اس زمانے کے لیے خاص نہیں، یہ تو بولنا پڑے گا بھائی، یہ آیت بھی اس زمانے کے لیے خاص ہے۔ تو کیا قیامت تک کے لیے آیت ہے؟ تو قیامت تک کے لیے وہ فیصلے بھی ہیں کہ ان فیصلوں کو ماننا پڑے گا۔ تو جیسے قرآن کی بات ماننی قیامت تک کے لیے ضروری ہے، اور قرآن کا فیصلہ قیامت تک کے لیے ضروری ہے ماننا اس کا، ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے کیے اور وہ فیصلے قرآن میں نہیں ہیں، تو وہ بھی ماننا لازم ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جب دو بتایا تم ایک کیوں کر رہے ہو اس کو؟ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، تو دونوں باتیں ماننا ضروری ہے۔ दोनों बातें मानना ज़रूरी है। तो इससे भी मालूम होता है कि इख्तलाफ के वक्त अल्लाह ने सिर्फ कुरान की तरफ नहीं फेरा, बल्कि इख्तलाफ के वक्त कुरान और सुन्नत की तरफ फेरा, यानी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की तरफ फेरा। तो इन दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, एक को छोड़ के चल सकते हैं नहीं, सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। इससे भी हदीस की हुज्जियत, रसूल के फैसलों की हुज्जियत मालूम पड़ती है। बल्कि कोई कह सकता रसूल का फैसला ठीक है लेकिन असल कुरान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल के फैसले से इन्हिराफ़ की गुंजाइश नहीं अल्लाह ने बताया, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बताए रसूल, मशवरा दिए हैं तो मान लो ना भाई, नहीं माने तो कोई बात नहीं, वो मशवरा है, रसूल का फैसला हतमी है। और रसूल का फैसला आने के बाद इंसान के पास इख्तियार नहीं रहता है, तो जिस चीज़ के सामने आने के बाद इख्तियार बाकी ना रहे वो लाजिम होती है या ऑप्शनल होती है? इख्तियारी ख़त्म, दूसरा कुछ नहीं कर सकते, यही करना पड़ेगा। जब इस तरह से इख्तियार ख़त्म हो जाए उस बात के सामने आने के बाद, तो मालूम है कि वो बात क्या है, ऑब्लिगेटरी है या ऑप्शनल है? हाँ, वो किए तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो क्या रसूल के फैसले की हैसियत ये है? हाँ, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा कदल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फकद दल्ल दलालन मुबीना। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 36। किसी मोमिन मर्द के लिए या किसी मोमिना औरत के लिए हरगिज़ भी इस बात की गुंजाइश नहीं, इस बात की गुंजाइश नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले में कोई फ़ैसला दे दें तो उस फैसले के आ जाने के बाद भी उन्हें कोई इख्तियार बाकी रहे। किसी मोमिन मर्द के लिए, किसी जब स्पेसिफिकली बोला जाता है तो बहुत जता के बोला जाता है, जैसे आदमी अपने घर वालों को नसीहत करे, बच्चों को समझाए ऐसा तुमको करना पड़ेगा, और नाम लेके कहे अहमद जैद फलां, सुनो मैं बोल रहा हूँ, मानना पड़ेगा तुमको। तो जब नाम लेके बोला जाए, स्पेसिफिक बोला जाए, उस बात की अहमियत और भी ज़्यादा। ये मत समझना कि मर्दों के लिए बोला जा रहा है और औरतों को छुट्टी है, बल्कि मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी हुक्म है, दोनों के लिए लाजिम है। क्या? यानी वो फैसला मर्दों के बाब में हो या औरतों के बाब में हो, वो हुक्म मर्दों के लिए हो या औरतों के लिए हो, दोनों को भी मानना पड़ेगा। किसी मोमिन मर्द के लिए, किसी मोमिना औरत के लिए हरगिज़ इस बात की गुंजाइश नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले में कोई फ़ैसला दे दे। या ये कहा जा रहा है कि अल्लाह फैसला दे, अल्लाह का फैसला कहाँ आएगा? अल्लाह का फैसला कहाँ आता है? कुरान में। और रसूल का फैसला, वो भी कुरान में, तो कुरान सिर्फ अल्लाह का फैसला बोला जाता ना, रसूल का नाम और ऐड करने की ज़रूरत क्या है कि भाई अल्लाह का फैसला है, अज़ाब किसकी तरफ से आता है, उसमें रसूल का नाम आता? अता अम्रुल्लाही, जब भी आएगा क्या आएगा, जब अल्लाह का अज़ाब आता है, फला तस्तअजिलू, अल्लाह का फैसला जब अज़ाब का होगा वो रसूल की तरफ से आता नहीं, उसके लिए रसूल को जोड़ा जाता नहीं। जहाँ अल्लाह का फैसला, अल्लाह का हुक्म अज़ाब वाला हो वहाँ रसूल का जिक्र नहीं आता, लेकिन जहाँ शरीयत का मामला हो वहाँ किसका नाम आता है? क्योंकि ये दोनों मसदर हमारे लिए है कि अल्लाह और उसका रसूल कोई हुक्म दें तो मालूम है कि स्पेसिफिकली यहाँ से भी आता है और वहाँ से भी आता है। अज़ाब यहाँ से नहीं आता, कहाँ से आता? अल्लाह की तरफ से। अता अम्रुल्लाह फला तस्तअजिलू, सूरह नहल आप देखिए पहली आयत एकदम, अल्लाह का फैसला आ गया अब जल्दी मत मचाओ, यानी अजाब का फैसला आया, अब आएगा अजाब, डरो मत, अब जल्दी मत मचाओ उसके लिए। तो अल्लाह का फैसला अजाब वाला जब होता है तो उसके लिए रसूल का जिक्र नहीं आता है। ये शरीयत और दीन की बात हो रही है, तो यहाँ अल्लाह ने और एक जोड़ा, क्योंकि ये भी एक सोर्स है। रसूल अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, हम पहले देख चुके हैं वो क्या होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ने क्या फरमाया, मन युति अल्लाह मन युति रसूल फ़कद अता अल्लाह, कि जो रसूल की माने उसने अल्लाह ही की मानी है। तो क्या मतलब अल्लाह और रसूल एक हैं? हाँ, उल्टा नहीं जाना कि अल्लाह और रसूल एक ही, हम तो पहले से बोल रहे हैं, बोलता है ना कोई आदमी कि अहमद और अहद में सिर्फ मीम का पर्दा है, इसकी अकल पे पर्दा है। अहमद में अहद और अहमद में सिर्फ मीम का पर्दा है, वो कयामत के दिन वो बैठ जाएगा जहालत से। ये ग्रामर के हिसाब से तो सही है लेकिन हकीकत के एतबार से सही नहीं है। बोलने के एतबार से कुछ भी बोल दे आदमी सही हो जाता हो, ग्रामर में सही हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, गलत है, ये बातिल है। ये दोनों अलग हैं, बंदा अलग रब अलग। तो मैं युतिउर रसूल फ़कद अता अल्लाह, जिसने रसूल की मानी उसने किसकी मानी? अल्लाह की मानी। यानी रसूल का फ़ैसला जो भी हो वो कहाँ से होता है? चाहे वो क़ुरान में हो या हदीस में हो। तो रसूल की बात मानने को लाजिम करार दिया अल्लाह ताला ने। क्या फरमाया? कि उनके लिए इख्तियार नहीं, रसूल का अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले के आ जाने के बाद उनको कोई इख्तियार नहीं। अय्यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसि अल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी करे वो बहुत खुली हुई गुमराही में जा पड़ा। यहाँ भी कितनों को जिक्र किया? दो हुक्म जिक्र किए कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो खुली गुमराही में जा पड़ा। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाने के बाद इख्तियार नहीं। तो मालूम ही हुआ कि ये दो मसदर हमारे पास हैं, एक अल्लाह का फरमान अल्लाह का कुरान और दूसरे रसूल का फरमान हदीस। इन दोनों को मानना ज़रूरी है, इसकी मुखालफत इसकी नाफरमानी हम नहीं कर सकते। और आगे बढ़ते हैं, रसूल के फ़ैसले से गुरेज करना मुशरिकीन व मुनाफिकीन का तरीक़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ। अब तो एकदम सराहत है, कहा कि जब उनसे कहा जाता है आओ उसकी तरफ आओ जिसको अल्लाह ने नाजिल किया है, إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ और रसूल की तरफ आओ। जब अल्लाह की तरफ से जो नाजिल किया उसकी तरफ आना काफ़ी होता तो रसूल के पास भी आओ कि बोलने की ज़रूरत क्या है। अल्लाह ने जो नाजिल किया है उसकी तरफ आओ और रसूल की तरफ आओ। मालूम है रसूल भी ज़रूरी है, सिर्फ अल्लाह के नाजिल हुए को पकड़ के चलना काफ़ी नहीं है बल्कि रसूल भी ज़रूरी है। रसूल की तरफ से आए हुए अक़वाल और अफ़ाल दोनों ज़रूरी हैं। قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا। तो मुशरिकीन कुफार क्या कहते हैं? जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया वही हमारे लिए काफ़ी है। ये नहीं चाहिए हमको, बाप दादा के रस्म रिवाज हमारे लिए क्या हैं? काफ़ी है। अवलव का न आबा उहम ला यालमून शैअन वला यहतदून। क्या उनके बाप दादा, यानी क्या ये उस वक्त भी अपने बाप दादा की पैरवी करेंगे जबकि उनके बाप दादा ना कुछ जानते रहे हों और ना हिदायत पर रहे हों? इल्म हिदायत से आरी बाप दादा की भी पैरवी करेंगे? तो मालूम कि उस ज़माने में बुलाया किसकी तरफ जाता था? खाली कुरान की तरफ। देखिए क्या कहा जा रहा है, इदा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता, कोई तो कह रहा है ना उनसे, क्या कह रहा है, किसकी तरफ बुला रहा है? इला मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया है। और किसकी तरफ बुलाया जाता था? रसूल की तरफ आओ। मालूम है कि रसूल की तरफ भी जाना है, रसूल भी, रसूल की तालीमात, रसूल की शख्सियत, रसूल से जुड़ना ये भी ज़रूरी है। खाली पैगाम ले लिया अल्लाह का और उस पर ज़िंदगी गुजार दी नहीं चलेगा। रसूल के पास बुलाया जाता था तो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कुरान वही और रसूल, रसूल की शख्सियत, आपके अक़वाल व फ़ाल, इनकी तरफ बुलाया जाता था। उसको अल्लाह ने गलत नहीं कहा, उसको अल्लाह ने गलत नहीं कहा, उनको गलत कहा जो नहीं आते थे। अल्लाह के पैगाम की तरफ, रसूल की शख्सियत की तरफ न आने वालों को गलत कहा गया। वो क्या कहते हैं? हमारे बाप दादा का तरीक़ा काफ़ी है। तो अल्लाह ने उनकी मजम्मत की तो मालूम ही हुआ कि रसूल की शख्सियत ज़रूरी है, सिर्फ कुरान पकड़ के चलेगा नहीं। ये सूरह अल-माईदा की आयत नंबर 104 है। इसी तरह से आप देखिए मुनाफिकीन के बारे में क्या कहा, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ। जब उनसे कहा जाता है आओ उस चीज़ की तरफ जिसे अल्लाह ने नाजिल किया और आओ रसूल की तरफ, तो अल्लाह फरमाता है रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अनका सुदूदा, तो ऐ नबी आप देखोगे कि मुनाफिक आपसे कतरा के निकल जाते हैं। तो जो नबी से कतरा के निकल जाए, नबी के कौल से, फ़ेल से, तालिमा से, उस्वा से कतरा के निकल जाए, इसमें क्या है, कौन सी बीमारी है? निफाक की बीमारी है। ये मुनाफिकीन की अलामत है, मोमिनीन की नहीं। तो जिसको नबी की तरफ बुलाया जाए, नबी की तालीमात की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा की तरफ, और वो कतरा के निकल जाए, बस नहीं आते हम, तो ऐसे आदमी के बारे में क्या कहा, रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अनका सुदूदा, तो ऐ नबी आप मुनाफिकीन को देखोगे कि वो आपसे कतरा के निकल जाते हैं, बच बचा के निकल जाते हैं, नहीं चाहिए हमको ये। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी तालीमात से एराज़, ये निफाक और कुफ्र शिर्क की अलामत है। और आगे बढ़ते हैं, रसूल के फैसले से आगे बढ़ने की ममानात, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़ैसला दे दें उस फैसले को कबूल करना ज़रूरी है, और उससे आगे अब नहीं बढ़ सकते हैं, उसको फलान के नहीं जा सकते हैं, उसकी पाबंदी ज़रूरी है। सिर्फ अल्लाह का फ़ैसला नहीं बल्कि रसूल का भी फ़ैसला। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 1। इसमें कई फ़वाद हैं। ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से किसी को आगे मत बढ़ाओ, अल्लाह और उसके रसूल पर किसी को मुकद्दम मत करो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो, और क्या कहा, इन्नल्लाह समीउन अलीम, तुम जो कुछ बोलते हो अल्लाह उसको सुनता है और सुनने वाला है और जानने वाला है, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे हाल को जानता है, न सिर्फ हाल को बल्कि अंजाम को भी जानता है, हाल को भी और माल को भी जानता है। तो यहाँ कहा अल्लाह और उसके रसूल से किसी को आगे मत बढ़ाओ, न अल्लाह से किसी को आगे बढ़ा सकता है अल्लाह की बात से, न रसूल पर किसी को तरजीह दे सकता है। तो मुनकिरीन हदीस के मुफस्सिर को रसूल की तफसीर पर फौकियत होगी, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अपनी राय को, बाप दादा के तौर तरीक़ों को, अपने उस्ताद की राय को, अपने सरदार को, अपने समाज के चाल चलन को, उनकी रविश को, किसी चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर फौकियत तकदीम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ अल्लाह के बारे में बात आ रही कि रसूल के बारे में, तो जो तौज़ीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी, जो फ़ैसला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया, जो बात आपने बोल दी, उसके आगे अब किसी की बात चलेगी नहीं। इससे भी हदीस की क्या मालूम होती है, हुज्जियत, कि सिर्फ अल्लाह का फ़ैसला नहीं बताया, अल्लाह का जिक्र नहीं किया, रसूल का भी जिक्र किया। तो जहाँ अल्लाह की बात के मुकाबले में किसी की बात नहीं चलेगी, वहीं रसूल की बात के मुकाबले में भी किसी की बात नहीं चलेगी। मिसाल के तौर पर आप देखिए, ये जो सियाक इस आयत का क्या है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अन्नहु क़दिम रकबुम मिन बनी तमीम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु तमीम का एक काफिला आपके पास आया, फ़क़ाल अबू बकर अम्र अलक़ाक़ा इब्न मअबद इब्न ज़ुरारा, आप क़ाक़ा इब्न मअबद इब्न ज़ुरारा को अमीर बनाइए। कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس, और हज़रत उमर ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, बल्कि आप اقرع ابن حابس को अमीर बनाइए, उनकी राय है इनको अमीर बनाइए, इनकी राय है उनको अमीर बनाइए। قال ابو بکر, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ما اردت الا خلافي, तुम तो बस मेरी मुखालफत करना चाहते हो। किससे कहा? हज़रत उमर से। हज़रत उमर ने क्या कहा? मा अरदतु खिलाफक, मैं आप थोड़ी ना आपके खिलाफ मुखालिफत की नीयत से राय दे रहा हूँ, मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। उनमें क्या हो गया? क्लैश, इख्तलाफ। फतमारया हत्ता इर्तफ़अत अस्वातुहुमा, उनमें इख्तलाफ हो गया और लड़ पड़े बातों बातों में, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ें ऊँची होने लगी। इस पर आयत नाजिल हुई, फनज़ल फी ज़ालिका या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू। आयत क्या नाजिल हुई? ऐ ईमान वालो, मुकदम मत करो अपनी राय को अल्लाह और उसके रसूल की बात पर, अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले पर। हत्ता इनक़दत, यहाँ तक कि पूरी आयत और सूरत ख़त्म हुई, पूरी की पूरी सूरत आई। ये सूरह, ये इमाम बुखारी ने इसको किताबुल मगाज़ी में रिवायत किया है, हदीस नंबर 4367। सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो सियाक है इसमें दोनों सहाबी एक राय पेश कर रहे थे, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, उन्हें क्या तलकीन की गई? फैसला वहाँ से आने दो, तुम पहले ही फैसले उसके करो मत कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। तो अगर आप जो फैसला करेंगे वो कुरान में आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़ैसला करें, क्या वो कुरान में आएगा या हदीस में आएगा? वो हदीस में आएगा। तो यहाँ पर आपके फ़ैसले को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुज्जत करार दिया कि आप जो भी मामला तय कर दें वो तुमको मानना पड़ेगा, उसका कुरान में होना ज़रूरी नहीं। आप अगर किसी को अमीर बना देते हैं, आपका फ़ैसला फ़ाइनल है, उस पर कोई और अपना फ़ैसला नाफिज कर सकता नहीं, तो हदीस में आ रहा ना। तो कुरान की आयत में बताया जा रहा है अल्लाह और उसके रसूल की बात पर किसी को मुकदम कर सकते नहीं, चाहे फिर वो बात कुरान में अल्लाह की बात हो या हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो। इससे भी मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले क़यामत तक के लिए हुज्जत हैं, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कि उस दौर के ईमान वाले, बल्कि कौन ईमान वाले? सारे। तो ये क़यामत तक के लिए आयत है, किसी को इस बात की इजाज़त नहीं कि अपनी राय को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरजीह दे। दो बातें कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक 14 नंबर बात, मसला नंबर 14, दलील नंबर 14 हम कहेंगे। अब यहाँ हम आते हैं, तो सारे अक़वाल फ़ैसले हमने देखे, आपकी हदीसों में तो नबी का अमल भी आता है ना, वो दलील कहाँ है? ठीक है भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले, जो समझाए, वो दलील है, मान लिया कि आपने जो फ़ैसला किया उसको हम मानते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो एक इंसान थे, तो आपका अमल भी दलील है क्या? हदीस में फिर वो क्यों जिक्र करते हैं आप लोग, आप ऐसा करते थे, आप ऐसे उठते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे? वो भी मानना चाहिए, उसको भी फॉलो करना चाहिए। हाँ, क्यों? हदीस दलील है, इसकी एक और दलील कुरान में क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को इख्तियार करने का हुक्म दिया है, उसको जो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। अल्लाह ने क्या फरमाया? लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए इस रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है। किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ذکر اللہ کثیرا, जो अल्लाह और बदले के दिन की उम्मीद लगाए हुए हैं, अल्लाह से अजर की, आखिरत की नजात की उम्मीद लगाए हुए हैं, या उससे डरता है, क्योंकि यरजू अरबी ज़ुबान में खौफ के लिए भी आता है। बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ खौफ मुराद है, कि जो अल्लाह से डरता है, आखिरत के दिन से डरता है। अगर वाकई डरने वाला है, मुत्तकी परहेजगार हैं, वज़कर अल्लाह कसीरा, और अल्लाह को खूब याद करने वाला है, ऐसे आदमी के लिए रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है, यानी रसूल की ज़िंदगी देखनी पड़ेगी। कुरान में देखेंगे, सोचिए, रसूल में बेहतरीन उस्वा है, यानी रसूल हमारे लिए क्या है? एक आइडियल शख्सियत है, सही। तो आपकी ज़िंदगी कहाँ मालूम पड़ेगी? कुरान में। आपकी ज़िंदगी देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? हदीस। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया, तुम्हारे लिए इस रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ज़िंदगी के किस हिस्से में? घर वाली लाइफ, मस्जिद वाली लाइफ, बाजार वाली, जंग वाली, एज अ टीचर, एज अ हस्बैंड, किस पहलू के बारे में अल्लाह ने बताया? कोई ख़ास पहलू बताया ज़िंदगी का? नहीं। मालूम हुआ कि रसूल की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए क्या है, रात दिन सुबह शाम घर बाहर मस्जिद जंग का मैदान बाजार और कज़ा और हर पहलू ज़िंदगी का है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए क्या है, उस्वा और नमूना है। तो कहाँ देखेंगे वो, भाई मूसा अलैहि सलाम के लिए कुछ मालूम करना है तो कुरान में वाकया है, इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखना है और वो भी पूरी ज़िंदगी देखना है, खुसूसन नबूवत के बाद वाली, तो कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, हदीसों में। तो इस आयत से, ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 है, इस आयत से मालूम होता है कि रसूल का अमल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी भी हुज्जत है, इसीलिए अल्लाह ने उसको उस्वा बताया हमको, और उस्वा जिसको बताया जाता है उसको फॉलो करना पड़ता है। लिहाजा अगर आपकी ज़िंदगी मालूम ना हो तो फॉलो क्या करेंगे, लिहाजा हदीस भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हदीस का दलील होना इससे भी मालूम होता है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसकी इत्तिबा का हुक्म भी दिया है। कोई कह सकता ठीक है उस्वा है, इत्तिबा का हुक्म इधर है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, जो इस उम्मी नबी की इत्तिबा करते हैं, फॉलो करते हैं उसको। फॉलो करना कैसे होता है, जैसे जैसे वो करें, किसी कहे मेरे पीछे पीछे आ, तो हुक्म तो है लेकिन अमल, वो मुड़ा तो मुड़ना पड़ेगा, सीधा गया तो सीधा जाना पड़ेगा, रुके तो रुकना पड़ेगा। तो जो इस नबी की इत्तिबा करते हैं, इस नबी को फॉलो करते हैं, तो उसको क्या देखना पड़ेगा, उस नबी का अमल, उस नबी का अमल देखना पड़ेगा, जो कुरान में है या हदीस में है, कहाँ है, कुरान में है ना, हाँ पूरा घूम फिर के एंड में, कुरान में कि हदीस में, नबी का अमल मौज़म, कुछ बातें तो हैं आपकी कुरान में भी हैं अल्लाह ने बताई, लेकिन आपकी ज़िंदगी के पहलू कहाँ मिलेंगे आपको, हदीस में। الذين يتبعون الرسول النبي الأمي, जो इस उम्मी नबी की इतबा करते हैं, फॉलो करते हैं, पैरवी करते हैं, الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, जिसका तस्करा ये अपने पास तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं, इनका तस्करा तौरात और इंजील में भी है, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, जो उन्हें भलाई भली बातों की का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, जो हलाल, जो तय्यबात उनके लिए हलाल करता है, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, जो खबीस चीज़ें इनके लिए हराम करार देता है, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, और इनके ऊपर जो बोझ थे और इनके गले में जो तौक थे, फ़राइज़ का जो बोझ पिछली शरीयतों में था और मुहर्रमात के जो तौक इनके गलों में रुकावटें बन के पड़े हुए थे, उनसे उनको क्या करता है, आज़ाद करता है, फल्लदीना आमनू बिही, तो जो लोग इस रसूल पर ईमान ले आएँ, वअज़्ज़रू, और इस रसूल की का दिफा करें, उसको डिफेंड करें, वनसरू, और इसकी मदद करें, नुसरत करें, वत्तबऊ नूर अल्लदी उन्ज़िला मअहु, और उस नूर की पैरवी करें जो इसके साथ नाजिल हुआ है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। आखिर में नूर की इत्तिबा का जिक्र आ रहा है, हाँ लेकिन शुरू में, आखिर में क्या आ रहा है, नूर की इत्तिबा करें जो नाजिल हुआ है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है, अल्लज़ीन यत्तबिउन अर्रसूल, जो इस रसूल की इत्तिबा करते हैं। मालूम कि जहाँ कुरान की इत्तिबा लाजिम है, वहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी लाजिम है। दोनों को अल्लाह ने एक आयत में जमा कर दिया कि कुरान की इत्तिबा भी ज़रूरी है, कुरान को फॉलो करना भी ज़रूरी है, उसकी तालीमात, लेकिन रसूल की पैरवी करना भी ज़रूरी है। मज़ीद इसमें सारी चीज़ों में भलाई का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, उनके लिए तय्यबात को हलाल करता है, खबीस को हराम करता है, उनसे बोझ हटाता है, निस्बत अल्लाह की तरफ है कि रसूल की तरफ, ये कौन करता है, तो मालूम करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या हलाल किया, क्या क्या हराम किया, क्या क्या आसानियां पैदा की, ये देखना पड़ेगा। तो किसको देखना पड़ेगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो कहाँ मिलेगा, हदीसों में। لہٰذا ان دلائل سے جو کہ قرآن کریم کی دلیلیں ہیں، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، ان دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا قول، آپ کا عمل اور آپ کا اقرار یعنی سکوت، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ دلیل ہیں اور شریعت کا ایک ماخذ ہے، قرآن کے ساتھ اس کو لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے قل اطیعوا اللہ ثم الرسول، ہے ایسا؟ سوچئے کہ اللہ کی مانو پھر اس کے بعد رسول کی مانو، ایسا ہے؟ اللہ نے کیسے ذکر کیا دونوں کو؟ ساتھ ساتھ۔ تو سنت قرآن کے ساتھ مصدر ہے، بعد نہیں۔ تو معلوم ہے کہ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے اس کو ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا، تبھی سمجھ پائے گا، نہیں تو بڑی مصیبت ہے۔ اگر نہیں تو سمجھ لیجئے منکر حدیث مر گیا، اگر واقعی قرآن پہ عمل کرنے لگا تو حدیث کو چھوڑ کے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام وأینما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تو اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور اے ایمان والو تم جہاں کہیں رہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ کب؟ آیت میں نماز نہیں، آیت میں نماز کا تحت ہے ہی نہیں نماز کا ذکر وہاں پر۔ اب آپ کیا کرو منکرین حدیث کو کیا بولنا پھر؟ میری طرف مت دیکھ، پلٹ کے جانے، اے ادھر کہاں جا رہا بھائی؟ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کر سکتا عمل؟ نہیں۔ اس کا یہ مت، تیری تشریح نہیں چاہیے، قرآن میں ہے وہ، تو کیا پوچھا ہم کو؟ رسول کی ماننا، حدیث مانو قرآن میں ہے، تیری مانو کدھر ہے؟ رسول کی مانو نہیں ہے، اور تو قرآن میں کہاں ہے نماز کے بارے میں؟ بتاؤ نکال کے۔ اور رسول کو تو ایک بار کا حکم ہے اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجئے، لیکن مسلمانوں تم کیا کرو؟ فأینما کنتم فولوا وجوہکم شطر، جہاں کہیں ہو، انگلینڈ، امریکہ، سعودی عرب، کہیں بھی ہو، گھر میں، باہر، چہرہ کدھر رکھنا ہے؟ آرام سے عمل کرتے رہو زندگی بھر، مڑنا نہیں کبھی، پلٹنا نہیں کبھی، کر سکتا عمل؟ تو آخر میں کیا بولنا پڑے گا اس کو؟ سوری، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ تو قرآن میں یہ حکم اس کو، یعنی رسول کی توضیح کیا ہے؟ ضروری ہے، رسول کی وضاحت ضروری ہے۔ اللہ نے اسی لیے بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں رکھی، رسول کے حوالے کر دیا، تاکہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو مجبور ہونا پڑے کہ نہیں، دیکھنا پڑے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس بارے میں، ذرا دیکھنا پڑے گا اس کو، ہاں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا، کائے کا بیک گراؤنڈ؟ قرآن بس، پھر آپ کو ایسے ہو جانا، نہیں نہیں نہیں، بیک گراؤنڈ کچھ نہیں، قرآن میں ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ بولے آپ بھی کرو عمل، ہم تو حدیث والے ہیں بھائی، آپ قرآن والے ہو، آپ کو حدیث کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آدمی دعوے بہت سارے کرتا ہے لیکن عمل کر پاتا ہے نہیں۔ تو ایسے بہت سارے دعوے انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے لیے کیا مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے جب وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک مصیبت میں نے ابھی آپ کو بیان کی، ایسی بہت ساری مصیبتیں ہیں جو ممکن ہے حدیث کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں جب وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو دیکھیں گے کہ ان کی شبہات کیا ہے، ان کی ڈاؤٹس کیا ہے، تو وہ ڈاؤٹس بھی کبھی انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے، اور ان کے جوابات کیا ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کسی مجلس میں دیکھیں گے۔ آج ہمارا عنوان بس یہی تھا کہ کیا حدیث بھی شرعی حجت اور دلیل ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھا حدیث بھی ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔